سلام خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دل کی بات۔ ویسے تو آج میں نے جیو پالیٹکس کے اوپر سیریز سٹارٹ کرنی تھی، پر جب میں اس کو کمپائل کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ اس میں میں نے بہت ساری ایسی باتیں بولنی ہیں، یا میرے بہت سارا جو انالیسز ہے وہ ایسا ہے جو کہ مین اسٹریم میڈیا یا مین اسٹریم کامنٹیٹر سے کافی ڈفرنٹ ہے۔ اور انفارچونیٹلی جب بھی میں نے کوئی ڈفرنٹ بات کرنے کی کوشش کی ہے آن ٹویٹر، انسٹاگرام یا یوٹیوب، تو کافی دفعہ لوگ آتے ہیں اور آ کے میری بات کو کمپلیٹلی مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ میری بات سے لاجیکلی ڈس ایگری کریں یا ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کریں اور اپنا بیانیہ دیں یا اپنا انالیسس دیں کہ یار آپ کی بات شاید ٹھیک نہیں ہے، میرا انالیسس کچھ اور کہتا ہے، میں نے جو ڈیٹا پڑھا ہے اس کے تحت مجھے لگتا ہے کہ تھنگز ول بی ڈفرنٹ۔ لیکن لوگ اس طرح کرتے نہیں ہیں۔ مور آفن دین ناٹ لوگ کرتے کیا ہیں کہ جب آپ کی ایک بات ہوتی ہے وہ اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو اٹھا کے وہ دیکھتے ہیں کہ یار مارکیٹ میں اور کون کون لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پھر وہ ان لوگوں کی پوری آئیڈیالوجی کو اٹھاتے ہیں، اس کو آپ کے اوپر ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں۔ اور آپ نے اگر ایک بات کی ہے کہ یار امریکہ جو ہے نا وہ پوری دنیا میں جنگیں کر رہا ہے، وہ ایک امپیریلسٹ پاور ہے فار ایگزامپل، تو وہ کہیں گے کہ یار آپ تو جو ہے نا اسلامسٹ ہیں، رائٹ ونگ کنزرویٹو ہیں، آپ کو تو جو ہے نا وہ ماڈرن دنیا سے مسئلہ ہے۔ یا آپ بولیں گے کہ یار پاکستان میں خواتین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، خواتین کے رائٹس کے اوپر کام ہونا چاہیے، ہمیں بہتر لاز اور بہتر گورننس سسٹمز چاہیے تاکہ ہماری خواتین سیفلی اور سیکیورٹی کے ساتھ رہ سکیں، تو ایک دم سے لوگ آئیں گے کہیں گے یار آپ تو ہیں ہی خونی لبرل، یہ تو جتنا سارے لبرلز ایسی باتیں بولتے ہیں، آپ بھی لبرل ہیں، آپ کو تو ہے ہی یہ شوق، آپ کو تو دل کرتا ہے کہ سیکولر ہو جائے پاکستان، اور آپ جو بس سیکولرزم میں بلیو کرتے ہیں، اس قسم کی کوئی بات بولیں گے اور پھر آپ کنفیوزڈ ہو گئے کہ یار میں اپنا کور پوائنٹ ہے میں اس کے اوپر مزید ڈبیٹ کروں یا نہ کروں، کہ اب اتنی ساری چیزیں میرے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں کہ میں کیا اب ان کو ڈیفینڈ کروں بیٹھ کے، یا میں یو نو دا انٹائر ڈسکورس بیکمز ویری مڈی اینڈ ویری نوائزی اینڈ اٹ بیکمز انکریزنگلی میننگ لیس اینڈ سپر ایگزاسٹنگ۔ کیونکہ ان سچویشنز میں سچ یہ ہوتا ہے کہ یار میں نہیں بلیو کرتا اور رینڈم جس بندے کو آپ نے اٹھایا اس کی پوری آئیڈیالوجی سے، انسان ایکچولی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کسی کی کوئی بات سے اگری کرتا ہے، کسی کی کوئی بات سے اگری کرتا ہے، وہ ایک پورا ایک فریم ورک بناتا ہے، کوئی بھی ایک انسان سب کچھ نہیں جانتا، دیر از نو سنگل پوائنٹ اور سنگل سورس آف ٹروتھ، اور میں بھی ویسا ہی ہوں۔ تو میں نے جب اس کے بارے میں تھوڑی سوچ بچار کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ مجھے اس طرح سے ڈبوں میں ڈالتے ہیں اور میری بات کو بارہا مسکنسٹریو کرتے ہیں، مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو مجھے اس سے یہ فیل ہوا کہ شاید لوگوں کو کیونکہ میرے پاسٹ کے بارے میں اتنا نہیں پتا، میری ایولیوشن کے بارے میں اتنا نہیں پتا، تو وہ ازیوم کرتے ہیں میرے بارے میں چیزیں، اینڈ مور آفن دین ناٹ ازمپشنز بنائی جاتی ہیں بہت سپرفیشل چیزوں پہ، یعنی کہ ایک بندہ دکھتا کیسے ہے، ایک بندے کی ڈریسنگ کیسی ہے، ایک بندہ بولتا کیسے ہے، وہ کتنی انگریزی بول رہا ہے، یو نو اس کا ایکسنٹ کیسا ہے، اس طرح کی چیزوں کے اوپر لوگ جنرلی کنیکشنز ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی ڈبے میں ڈالنے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں، کوئی اسٹیریو ٹائپ آپ کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ آسان ہے کرنا کہ ایک بندے کو آپ نے ڈبے میں ڈالا اور بولا یار یہ تو ایسے لوگ تو ہوتے ہی پاگل ہیں، سائڈ پہ کرو اور آگے نکل گئے، ورسز کہ آپ ایک بندے کو ایکچولی انڈرسٹینڈ کرو، اس کی بات کو ڈیکنسٹرکٹ کرو اور پھر سوچو کہ یار ہاں شاید اس نے ایک نیا پرسپیکٹیو دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیز ہے جس سے میں ایکچولی اگری نہیں کرتا اس میں شاید کوئی صداقت ہو، تو مجھے تھوڑا اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، مجھے تھوڑی ریسرچ کرنی چاہیے اس کے اوپر۔ خیر سو اس تھاٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ بفور آئی گیٹ انٹو جیو پالیٹکس، بفور آئی گیٹ انٹو اینی تھنگ ایلس، کیونکہ آنے والے دنوں میں میں نے جیو پالیٹکس کے بارے میں اپنی تھاٹس دینی ہے، پھر ہم بلوچستان چلے جائیں گے، بلوچستان کے بارے میں تھاٹس آئیں گی تو اس پہ بھی کنٹروورسی بن سکتی ہے، پھر پرٹیکولرلی آئی ڈو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس سارٹ آف کلچر وار جو پاکستان میں پوری دنیا میں ہو رہی ہے لیکن پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، لیفٹ ونگ ورسز رائٹ ونگ، اور یو نو اگین یہ جو ڈبے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جو ایکسٹریمزم کے فرنجز ایگزسٹ کرتے ہیں وہ کیوں ہیں، اور یو نو آنے والے وقت میں کیا وہ فرنجز بڑھیں گے، کیا پولرائزیشن بڑھے گی، کیا اگریشن بڑھے گا یا وہ کم ہوگا، ان تمام چیزوں کے اوپر جب آپ بات کریں گے تو آبویسلی اس کے اوپر لوگ فرسٹریٹ ہوں گے، اور جب لوگ فرسٹریٹ ہوں گے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ آپ کو کسی ڈبے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سو بیفور وی گیٹ انٹو اینی آف دوز، میں ایک بیس بنانا چاہ رہا ہوں اپنا بیک گراؤنڈ سمجھا کے کہ ایگزیکٹلی میری پرسنل ایولیوشن کیسی ہوئی ہے، کیونکہ میری ایولیوشن بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ کر آئے ہیں تو آلریڈی آپ نے چھریاں تیز کرنا شروع کر دی ہوں گی کہ یہ کیا بات کی ہے اس نے، پر میں جو آج کل اور پرسوں کی ویڈیو ہے اس میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان کس طرح سے ڈفرنٹ چیزوں میں ایوالو کرتا ہے، اور یہی ایولیوشن اس کی گروتھ ہوتی ہے، وہ کہیں بھی رائٹ یا رانگ نہیں ہوتا، ڈفرنٹ ایکسپیرینسز اس کو ڈفرنٹ جگہ پہ لا کے کھڑا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس جگہ پہ رک جائے اور اس سے مزید آگے بڑھنا چھوڑ دے تو پھر آئی فیل لائک کہ وہ ڈسٹرکشن کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنا دماغ کھلا رکھے اور ہمیشہ نئے ایکسپیرینسز لیتا رہے اور اپنے آپ کو ایوالو کرے تو پھر یو نو یو آر آلویز آن دا رائٹ ٹریک۔ اور پرٹیکولرلی اس میں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جن کو آپ جب دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ رائٹ پہ ہیں یا لیفٹ پہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کتنے بےغیرت لوگ ہیں، کتنے امورل لوگ ہیں، یہ تو بس ضلالت چاہتے ہیں، یہ تو بس جو ہے نا برائی چاہتے ہیں، یہ تباہی چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کا جو نظریہ ہے، چاہے وہ جتنا ایکسٹریمسٹ ہو، چاہے وہ جتنا لیفٹ یا رائٹ پہ ہو، वो किसी एक्सपीरियंस की बेस पे होता है, वो किसी ट्रॉमा की बेस पे होता है। आपकी लाइफ में शायद वो ट्रॉमा नहीं आया जिसकी वजह से, या आपने उस तरह के कोई एक्सपीरियंसेस नहीं किए जिसकी वजह से आप एक डिफरेंट टेंजेंट पे हैं। पर एक तो ये कि आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस आएँ जिसकी वजह से आपका नज़रिया बदले, और अगर नहीं भी आते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा गलत है। वो बंदा अपने स्कोप में हो सकता है बिल्कुल दुरुस्त हो, और आप अपने स्कोप में हो सकता है बिल्कुल दुरुस्त हो। सच इन दोनों स्कोप्स के दरमियान में कहीं पर लाया करता है। उसके लिए थोड़ा सा ठहराव चाहिए, थोड़ी सी आजिज़ी चाहिए, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी चाहिए है। बट खैर, हम अपनी वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। बस जाने से पहले ये याद रखिएगा कि ये पार्ट वन है, पार्ट टू कल आएगा। आप इस वीडियो के एंड तक जो भी सुनेंगे उसमें चेंजेस आएंगी। ये क्लिफ हैंगर पे मैं आज छोड़ के जाऊँगा, तो आप उसके ऊपर अगेन छुरियाँ तेज़ करके मेरी गर्दन काटने ना आ जाइएगा। पूरी आज कल और परसों की वीडियोस देखकर फिर आपने मेरे से डिसएग्री करना है, आपने अपने जो भी थॉट्स देनी है, एक दफ़ा पहले पूरी चीज़ को देख लें, पूरी थॉट को समझ लें। किसी एक चीज़ को देखकर ओपिनियन बनाकर पहले से रिएक्ट ना करिएगा। बट नन द लेस, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ टॉपिक। सो 1990 में मैं सऊदी अरब में जद्दा में पैदा हुआ, और उसके कुछ ही अरसे बाद गल्फ वॉर स्टार्ट हो गई और सऊदी अरब ने नॉन सऊदीज को जॉब से हटाना शुरू कर दिया। और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि जी अब हम रैप अप करके 15 साल बाद, क्योंकि 15 साल से वो सऊदी में थे, 15 साल बाद हम वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। सो 1991 में मेरे वाले साहब, मेरी वालदा और हम 6 बहन भाई, जिसमें मैं सबसे छोटा था, मेरी सबसे बड़ी बहन, उसके बाद 3 भाई, उसके बाद एक और बहन, और फिर मैं, हम सब मूव करके लाहौर आ गए जहाँ पर हमारा एक घर था। और वहाँ पर मेरे वाले साहब ने डिफरेंट जॉब्स ढूंढना शुरू कर दी। अच्छा, एक पूरा साल वो ढूंढते रहे जॉब्स, उनको लाहौर में कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिली। फिर उन्होंने आगे पीछे अप्लाई करना शुरू किया। पता ये लगा कि जी इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में एक्चुअली एक नया बैंक खुल रहा है, अस्करी बैंक के नाम से, वहाँ पे जॉब्स आई हुई हैं। तो उन्होंने उधर अप्लाई किया, और उधर वन थिंग लेड टू द अदर एंड ही फाइनली गॉट अ जॉब। और ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ अस्करी बैंक एट द टाइम। बिल्कुल बैंक नया नया खुला था, अभी वो सारा सेटअप बिल्ड कर रहे थे। मतलब वो मुझे बताते हैं कि जी इवन जो नोट पैड्स हैं और जो लोगों की चीज़ें हैं वो भी प्रिंट नहीं हुई हुई थी, कोई ब्रांच प्रॉपर नहीं थी, किसी होटल में इंटरव्यूज हुए थे और वहीं पर बैठ के उन्होंने सारा पूरा सेटअप किया था। तो बिल्कुल अर्ली डेज के अंदर उनको वो जॉब मिल गई। उनका पहले सऊदी अरब के अंदर एक्सटेंसिव सऊदी ब्रिटिश बैंक का एक्सपीरियंस था, यूनाइटेड बैंक का एक्सपीरियंस उससे पहले पाकिस्तान में, तो वो करियर बैंकर थे। उन्होंने यहाँ पे भी आके बैंकिंग की जॉब ली और वो मूव हो गए इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद में जब वो आए तो उन्होंने देखा कि यार बड़ा अच्छा साफ सुथरा शहर है। बाहर से जो लोग आए हुए थे उनके लिए जनरली उनको पाकिस्तान की इतनी समझ नहीं आती बाकी शहरों की, इवन दो ग्रोइंग अप वो खुद तो पर्सनली लाहौर में रहे, लेकिन बच्चे जाहिर है काफ़ी सारे जो हैं वो सऊदी में पैदा हुए हैं, वो एक बड़े डिफरेंट कल्चर में बड़े हुए हैं। तो इस्लामाबाद ऑन द अदर हैंड उस टाइम के ऊपर बड़ा एक छोटा सा शहर था, बड़ा एक सॉर्ट ऑफ फैमिलियल सा शहर था, जल्दी बंद हो जाता था, सेफ्टी सिक्योरिटी थी, एवरीबडी वुड नो एवरीवन। सो इट फेल्ट लाइक अ स्पेस जहाँ पर उनको लगा कि यार यहाँ पर हम अब रिटायरमेंट तक रह सकते हैं और हम लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार अब हम इधर एक घर ले लेते हैं, जो लाहौर का घर है उसको बेचते हैं और हम इस्लामाबाद में एक परमानेंट घर ले लेते हैं। खैर, उनको एक घर पसंद आ गया, डील हो गई, और उन्होंने टोकन मनी जो होता है स्टार्ट का 1/4 ऑफ द टोटल अमाउंट वो उन्होंने दे दी, और हम लोग उस घर में मूव हो गए। मूव इस तरह हुए कि जो मेन घर था उसमें जो सेलर्स थे वही रह रहे थे, और जो बेसमेंट था उसका उसके अंदर हम लोग मूव हो गए। और जब मैं कहता हूँ हम, तो मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी उस वक्त तक, बाकी हम 5 बहन भाई, अम्मी अब्बू और हमारी दादी, हम सब लोग जो हैं वो इस घर में मूव हो गए। टोटल घर जो ये स्पेस थी इसमें तकरीबन 3 कमरे थे, 2 बाथरूम थे, और उसमें एक जो कमरा था वो दादी के पास चला गया। एक कमरा जो था उसमें अम्मी अब्बू थे और हम, मेरा ख्याल है 3 या 4 बहन भाई उधर सोते थे, और एक छोटा सा कमरा था जिधर मेरे बड़े भाई या बड़े 2 भाई वहाँ पे रहते थे। अच्छा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिन लोगों ने वो घर बेचा था उन्होंने कहा कि जी हमें ज़रा ना 1-1.5 महीना चाहिए, हमने यहाँ से रिलोकेट होकर अगली जगह पे जाना है। तो वो उधर रुके हुए थे, हम जो है वो वेट कर रहे थे कि वो खाली करेंगे तो हम जाके फाइनल पेमेंट करेंगे और हम घर को ले लेंगे। विद इन अ कपल ऑफ वीक्स उस घर की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई थोड़ी सी, और उन्होंने कहा कि यार ये तो अब हमें महंगे में बेचना है, लेकिन डील हो चुकी है, लीगली सिचुएशन सारी हो चुकी थी, हमने भी लाहौर में जो अपनी प्रॉपर्टी उसी वैल्यूएशन में बेच दी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ऊपर एक कोर्ट केस कर लिया, और एज मोस्ट ऑफ यू वुड नो इन पाकिस्तान के प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स कैसे चलते हैं, और वो अपना ही जो है ना वो केस कर आके स्टे ऑर्डर ले लिया। और ये जो लिविंग सिचुएशन थी जो कि हमने सोचा था कि यार 1-1.5 महीने के लिए रहना है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी स्पेस के अंदर हम रह लेंगे, वो अगले 10 साल चली। अगले 10 साल कोर्ट के केसेस चलते रहे, और जो जिन लोगों ने बेचा था वो हमारे ऊपर वाले फ्लोर्स पे रह रहे थे, हम लोग नीचे वाले इस बेसमेंट में थे, और हम कॉन्स्टेंटली सुबह शाम उनसे मिलते भी थे, और फिर कोर्ट केस भी चल रहा था, और इट वॉज अ वियर्ड सिचुएशन। और मेरा जो चाइल्डहुड था ना पूरा का पूरा, वो इस चीज़ को देखते हुए और इस चीज़ को समझते हुए ही गुजर गया। मतलब मुझे, क्योंकि मैंने होश संभाला तो मुझे इसके अलावा कोई रियलिटी नहीं पता थी, मुझे बस पता था वो जो स्पेस, वो छोटी सी स्पेस दैट वी वर लिविंग इन, और मुझे ये पता था कि यार एक कोर्ट केस है, और अगर हम ये कोर्ट केस हार गए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ना तो रुपया आपका डिवैल्यूएट होता गया और हमारे पास कोई नेट एसेट था नहीं उसके अलावा, तो हमें पता था कि यार मेक और ब्रेक है, या तो हमें ये मिलेगा या हमारे पास कोई घर होगा ही नहीं, फिर हम किराए पे रहेंगे एट एनी गिवन टाइम। तो इट वॉज अ वेरी सुप्रीमली स्ट्रेसफुल टाइम और हम उसमें रहते रहे। खैर वो यू नो सेशन कोर्ट टू हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, वो इवेंचुअली हमने वो सारे जीते। आई थिंक 2003-2004 में हम फाइनली मूव हो गए। अच्छा, ये एस्पेक्ट मैंने इस वजह से मैंशन किया क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस एस्पेक्ट ने मुझे पाकिस्तानी लीगल सिस्टम को समझने का, एक बहुत क्लोजली समझने का मौका दिया। जब आपकी इतनी यंग एज में ना आपको सुबह शाम के ये मसले पता लग रहे होते हैं कि यार वो मुंशी जो है वो पैसे मांग रहा है, अगर पैसे नहीं होंगे तो फाइल नहीं मूव होगी, वो एक तारीख लग रही है, फिर वो दूसरी तारीख लग रही है, फिर वो तीसरी तारीख लग रही है, फिर वो हो नहीं रहा, फिर उनका लॉयर नो शो है, अब उन्होंने एक नया केस कर दिया, तो लूप होल्स कि भरमार भी हमने देखी, हमने वो स्ट्रेस भी देखा, हमने वो देखा कि यार किस तरीके से गेमें होती हैं पाकिस्तान में। एंड कीपिंग इन माइंड कि ये एक ऐसी फैमिली थी जो कि 15 साल बाहर रहकर आई थी, यू नो थियोरेटिकली मुहाजिर लोग थे, राइट? सो 1947 में हिजरत करके लाहौर आए थे, तो वो कोई गांव नहीं था, वो कोई बैकिंग नहीं थी, और मेरे वालिद साहब का तर्ज भी ऐसा था कि यू नो ही ऑलवेज वांटेड कि सिस्टमैटिकली चीज़ें हों, जैसा कि वो सऊदी में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि चीज़ों को स्ट्रक्चर और सिस्टम के तहत चलाओ तो यू नो सब सही रहेगा। लेकिन वो स्ट्रक्चर और सिस्टम के तहत चलाने का मतलब ये था कि आप जो है ना वो फिर बैठ जाएं और फिर हम बैठे रहे। बट एनीवेज दिस वाज अ मेजर मेजर थीम ग्रोइंग अप जो कि मैंने एक्सपीरियंस की। इसके साथ अगर मैं बताऊं तो जो हमारी ओवरऑल फैमिली थी, जो वैल्यू सिस्टम था, वो एक जेनेरिक क्विंटेसेंशियल पाकिस्तानी फैमिली का जैसा होता है, जैसा मैं आज भी देखता हूँ फैमिलीज का होता है, कि बड़ा सिंपल सा लाइफस्टाइल था। उस टाइम के ऊपर कैपिटलिज्म इतना था नहीं, बाहर के खाने वाने का कोई मजाक ही नहीं होता था। इस्लामाबाद में तो बिल्कुल ही कोई सीन ही नहीं था, ना मैकडोनल्ड्स, ना KFC, ना कुछ। घर पे खाना बनता था, अम्मी जो थी वो हाउसवाइफ थी, उनका सिस्टम यही होता था कि जी हमने खाना खाना बनाना है और अब्बू ने जॉब पे जाना है और फिर वापस आना है, और रात को सबने बैठ के वो एक यू नो 21 इंच का वो सोनी का, आपको याद होगा, ब्लैक रंग का टीवी हर पाकिस्तानी घर में होता था, तो उस टीवी के ऊपर बैठ के खबरनामा देखना है। यू नो बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में देखना अलाउड नहीं है, खासकर बच्चों को, बड़े तो देख लेते थे लेकिन लड़कों को बॉलीवुड अलाउड नहीं था उस टाइम पे। मेरी वालदा ने आई गेस स्मार्टली सोचा कि यार ये इश्क मोहब्बत की जो गलत चीज़ें शाहरुख खान सिखा रहा है वो अगर लड़कों को पता लग गई तो अजीब हो जाएंगे। बट नंदलेस बॉलीवुड अलाउड नहीं था, हॉलीवुड जो है वो कुछ कुछ अलाउड था, मतलब लायन किंग वगैरह हम देख लेते थे। बड़ा उन्होंने कंट्रोल रखा हुआ था, यू नो बड़ा उस तरह का सीन था कि यार टीवी ज़्यादा नहीं देख सकते, टाइम ज़ाया होता है, ज़्यादा वीडियो गेम्स नहीं खेलनी, बहुत ज़्यादा यू नो चीज़ों के ऊपर कंट्रोल था, स्ट्रिक्ट था। और वैल्यू सिस्टम वाइज जो ज़्यादातर आपको स्कूल में, फैमिली में, सोसाइटी में सुनने को मिलता था वो यही मिलता था कि जी पाकिस्तान बहुत फिट है, पाकिस्तान जो है वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड है, और हमने 1965 की जंग जीती और फिर हमने 1971 की जंग जीती, और हम मुसलमान हैं और हम हर मुश्किल को सर कर लेते हैं, हम यू नो वी आर द गॉड्स चोजन पीपल एंड देर इज़ नथिंग दैट वी कांट डू। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता था, कोई मेरा फ्रेमवर्क नहीं था, कुछ एक्सेस भी नहीं था यू नो किसी इन्फॉर्मेशन का या किसी कॉन्टेंट का जिसको मैं देख के कहूँगी दुनिया बाकी है कैसी। मुझे बस पाकिस्तान का पता था, पाकिस्तान में वो PTV STN वगैरह के ऊपर जो नज़र आता था आपको, जुनैद जमशेद तो जुनून तो क्रिकेट वगैरह थोड़ा बहुत देख लिया, बाकी आपको बहुत थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा अमेरिका का पता लगता था, हॉलीवुड शॉलीवुड की फिल्में अगर आपने इक्की दुक्की देख ली तो आपको एक थोड़ा सेंस मिलती थी कि ये एक दूसरा कल्चर है, ये कैसा है। लेकिन बार बार सुनने में ये आता था कि ये अमरीकी बड़े बुरे लोग हैं और यू नो इन लोगों ने पूरी मुसलमान दुनिया के साथ बहुत बुरा किया और जंगें करवाईं और ये तो हैं ही हमेशा से जो है ना ख़राब लोग, और यू नो बोस्निया में मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई और उसमें पाकिस्तानियों ने जाके उनको बचाया, और फ़लस्तीन में ज़्यादती होती है और कश्मीर में ज़्यादती होती है, और वर्ल्ड व्यू ऐसा था कि हम लोग जो है ना वो बेचारे बड़े मिस्कीन हैं और मासूम हैं और हमारे साथ कॉन्स्टेंटली ज़्यादतियाँ होती हैं, और ये लोग ना बड़े बड़े स्केरी और कनिंग किस्म के लोग हैं और वो बाय डिज़ाइन आपके साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी। मैक्सिमम जो आपका इंटरेक्शन था वो ये था कि यार मामूज वगैरह होते थे, बहन होती थी अमेरिका के अंदर और मामू वगैरह होते थे अमेरिका में, तो पता होता था कि यार अमेरिका का सीन तो है, मतलब सुनने में बड़ा आता था कि अमेरिका का सीन तो है, बट ऑब्वियसली आई कुडंट एज अ यंग चाइल्ड कॉन्टेक्चुअलाइज के उस सीन होने का क्या मतलब है। बस मुझे पता था कि यार वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ पे यू नो बड़ा एडवांस है, पर मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील होता था कि पाकिस्तान शायद बहुत कम नहीं है, बस ये है कि यू नो हम उतने अच्छे नहीं हैं, और वो भी इस वजह से क्योंकि यू नो अमेरिकन्स ने आके जो है ना वो हमें जलील किया हुआ है और आज तक जलील करते रहे हैं, और सैंक्शंस लगाई हुई हैं क्योंकि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया और हम तो बड़े किंग हैं कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया वगैरह टाइप की चीज़ें। एंड अगेन ये कोई इंडॉक्ट्रिनेशन नहीं हो रही थी कि मुझे कॉन्स्टेंटली सुबह शाम बैठ के तस्बीह पढ़ाई जा रही है, ये डिस्कोर्स था, ये हमारी फैमिली का डिस्कोर्स था, ये सोसाइटी का डिस्कोर्स था, और सटल डिस्कोर्स, राइट? यू नो आप डिस्कशन कर रहे हो तो आप ये थॉट लेकर आओगे और वही थॉट आप अपने दिमाग में डालते हो। सऊदी और मिडिल ईस्ट के बारे में जाहिर है कि फैमिली हैड वेरी गुड मेमोरीज एंड दे वुड से ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेरी कूल थिंग्स के यार सऊदी अरब तो बड़ा ज़बरदस्त था, और यू नो वहाँ पे सारा खिलौने ऐसे होते थे और लेगो होता था और पता नहीं अटारी होता था। लेकिन ये कि उसके अलावा मुझे पर्सनली आई डिड नॉट हैव अ वेरी डाइवर्स वर्ल्ड व्यू. और इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें कि जब 9/11 हुआ था ना, तो उस टाइम के ऊपर मुझे याद है कि सोसाइटी एट लार्ज वो सेलिब्रेट कर रही थी ट्विन टावर अटैक्स को. यानी कि एटलीस्ट बड़ों का मुझे नहीं पता, बट हम बच्चे, हम स्कूल गए तो सब ने कहा, वो देखा वहाँ पर अमेरिका के साथ सही हो गया ना. और फिर जब अमेरिका की फॉलो अप पे अफगानिस्तान में जंग हुई, तो हमें हुआ कि ये मुजाहिदीन के साथ ज्यादती हो रही है, और यू नो ये मुजाहिदीन विल शो देम, एंड और वो अमेरिकन को दिखाएंगे कि यू नो हु इज़ द रियल पावर और वगैरह वगैरह. बट नॉनदलेस, दिस वाज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ के थॉट प्रोसेस उस वक्त क्या था, आवाज़ इर्द गिर्द क्या थी, जिसकी वजह से एक वर्ल्ड व्यू क्या बना हुआ था. सेपरेटली ऑब्वियसली आई वॉज द यंगेस्ट ऑफ सिक्स सिबलिंग्स. आप अंदाजा लगाएं, मेरी बड़ी बहन मेरे से 16 साल बड़ी है, मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं मेरे से 13 साल बड़े हैं. तो पावर डायनामिक जो था ना फैमिली में, वो बड़ा डिफरेंट था. एक तो मैं बड़ा शेल्टर्ड सा था, बड़ा प्रोटेक्टेड सा था, और दूसरा ये कि जब 6 बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स छोटे वालों को नहीं चला रहे होते, छोटे बच्चे ऑटोमेटिक चल रहे होते हैं. जनरली कोई बड़े बहन भाई होते हैं जो कि पेरेंट्स का रोल निभा रहे होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स, मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ, उनके पास इतने सारे काम थे, 5 बच्चों को खिलाना, घर को सेट रखना, सारी चीज़ फिगर आउट करना, फिर कोर्ट का केस भी चल रहा है, फिर माय दादी वाज वेरी ओल्ड एज वेल. तो जनरली जो है वो यू नो बहुत सारे सिबलिंग्स हैं, और सिबलिंग्स के अंदर आज सबसे छोटे हो ना, तो आपकी कोई से नहीं है, आपका कोई राइट नहीं है, आपकी कोई नीड वॉन्ट नहीं है. वो नीड वॉन्ट जो भी आपकी है वो तब है अगर वो पहले आपके बड़े भाइयों को समझ आए, अगर वो मान जाएंगे हाँ ठीक है शायद मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, फिर वो पेरेंट्स के पास जाएगी, फिर पेरेंट्स डिसाइड करेंगे. सो ग्रोइंग अप मैंने जो इनहेरेंट स्किल एक्वायर की वो ये कि मैंने नेगोशिएशन सीखी, मैंने पॉलिटिक्स सीखी. मैंने पॉलिटिक्स बेसिकली क्या सीखी, मैंने देखा कि यार अच्छा डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं मेरे घर के अंदर, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे उन स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करना है, मुझे उनका इंटरेस्ट अलाइन करके उनको समझाना है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए. अगर मेरी कोई चीज़ सेल्फिश है ना, तो मोर ऑफन देन नॉट वो चीज़ सैंक्शन नहीं होगी. तो मुझे कहीं ना कहीं किसी और का इंटरेस्ट उसमें अटैच करना है, क्योंकि मैं पर्सनली कुछ नहीं कर सकता, कोई बड़ा है, अगर उसका यस होगा तो फिर वो चीज़ शायद आगे चली जाए. मीनवाइल स्कूल के लिए एक गवर्नमेंट स्कूल है OPF के नाम से, ओवरसीज पाकिस्तानी इसकी जो मिनिस्ट्री है वो चलाती है, और उसके अंदर मैंने तकरीबन प्रेप से लेकर 7th grade तक मैंने वहाँ पर पढ़ा. यू नो बड़ा सिंपल सा स्कूल था, अच्छा बड़ा कैंपस था, बट कोई ऐसा हाई फाई नहीं था, कोई AC वेसी नहीं लगे हुए थे, सिंपल अच्छा स्कूल. टीचर्स जो हैं उन्होंने जेन्युइनली वैल्यूज़ के ऊपर ख्याल दिया, ध्यान दिया, और जो कि मैं पर्सनली बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरा वैल्यू सिस्टम, मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया, बट मेरी उस वक्त के टीचर्स ने बहुत ज़्यादा फोकस किया, जो कि मैं देखता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स में जनरली आजकल नहीं होता. बस वो ये होता है कि यार ग्रेड लो और आगे निकलो. तो उस स्कूल ने एक्चुअली इखलाक भी सिखाया, तमीज़ भी सिखाई, ठहराव भी सिखाया, इस तरह की चीज़ें सिखाई. सो अगैन इट वॉज़ अ पब्लिक स्कूल, तो उसमें हम मुर्गा भी बनते थे, हमें फुट्टे से पटाई भी होती थी. हम एक बॉयज़ कैंपस थे इन अ वेरी बिग गर्ल्स कैंपस, OPF गर्ल्स कॉलेज के नाम से वो स्कूल था, और उसमें एक छोटा सा बेसिकली प्राइमरी का एक कैंपस था, जिसमें वो प्राइमरी की क्लासेस को बढ़ाते गए. तो 7th जमात तक तो मैं वहीं था, फिर इवेंचुअली मैंने स्विच किया. अच्छा जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ना, ये समझ लें कि 2003-2004 की बात है, तो मेरी लाइफ में 4 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई जिसने ना सिर्फ मेरा वर्ल्ड व्यू बदला, बल्कि समझ लें कि मेरी पूरी जिंदगी जो है ना वो अपसाइड डाउन कर दी, इन गुड वेज एंड इन बैड वेज. पहला तो ये हुआ कि मैं उस गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल से स्विच होकर एक प्राइवेट स्कूल चला गया, बीकन हाउस मरगला कैंपस इस्लामाबाद. दूसरा ये हुआ कि एक के बाद एक जो हम 5 बहन भाई थे, क्योंकि बड़ी बहन की शादी हुई भी थी तो वो नहीं थी, जो 5 बहन भाई रह गए थे उसमें से 4 जो बड़े थे वो एक एक करके घर छोड़ के चले गए. घर छोड़ के ये नहीं कि लड़ाई हो गई तो छोड़ के चले गए, वो बेसिकली जो बड़े 3 भाई थे उनकी जॉब्स लग गई. सो उन्होंने फास्ट इस्लामाबाद से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट किया, वो टाइम था IT का बूम था, तो सबसे बड़े मेरे भाई जो है वो कनाडा चले गए, उनकी वहां पे जॉब हो गई. दूसरे मेरे भाई जो है वो अमेरिका चले गए, वहां पे उनकी जॉब हो गई. तीसरे भाई जो है उनकी पाकिस्तान में जॉब थी, लेकिन वो कंसल्टिंग प्रोजेक्ट पे जाते थे, तो वो कभी साउथ अफ्रीका होते थे, कभी कतर होते थे, कभी स्विट्जरलैंड होते थे, तो वो भी घर पे बाय एंड लार्ज नहीं होते थे. साल में 1-1.5-2 महीने के लिए वो आ जाते थे, बट जनरली वो बाहर ही होते थे. और जो मेरी बड़ी बहन थी उन्होंने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया और उन्होंने लम्स में दाखिला ले लिया. और चूंकि मैंने आपको अर्लियर बताया था कि हमारे घर का एक केस चला पूरा 10 साल का, तो उस अगेन वो जो इस तरह की चीज़ें होती है ना वो आपको इतना ज़्यादा अफेक्ट करती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ कि यार ये लीगल केसेस, लीगल सिस्टम, फादर का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखकर उन्होंने कहा कि यार मैंने लॉ करना है. और वो लॉ करने के लिए वो लम्स चली गई. और एक ऐसा घर जिसमें तकरीबन 7 लोग थे वो सडनली 3 लोग रह गए, और जहाँ पे 5 बहन भाई थे वो सडनली मैं अकेला रह गया. अच्छा मीनवाइल पाकिस्तान की वॉर ऑन टेरर जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, और उस वॉर ऑन टेरर की वजह से जो सिक्योरिटी सूरत हाल थी वो पाकिस्तान में डिटेरियोरेट होना शुरू हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता यू नो सुसाइड बॉम्बिंग्स होना शुरू हो गई, बस वो पुलिस की चौकियाँ लग गई हर तरफ. और वो जो फॉर्मेडेबल ईयर्स थे टीनेज के वो मेरे इस उसमें गुजरे जिसमें ये बड़ा नॉर्मलाइज हो गया कि अच्छा यार कोई बम फटता है और بچے مرتے ہیں اور یو نو خواتین مرتی ہیں اور سویلینس مرتے ہیں. دس وازنٹ اے وار, کنونشنل وار جہاں پہ فوجی سے لڑا تھا. یہاں پر ہمارے گھروں, ہماری مساجد, ہمارے آرڈنری علاقوں میں بم پھٹ رہے تھے جس پہ عام سادہ لوگ مر رہے تھے. اینڈ اگین گروئنگ اپ, جب آپ کو صبح اسکول کے اسمبلیوں کے اندر سننے میں مل رہا ہو کہ یار اسمبلی نہیں ہو سکتی, بم کا تھریٹ ہے, اسکول میں گھستے ہوئے میٹل ڈیٹیکٹرز لگے ہوئے ہیں, کانسٹنٹلی ایک ٹینشن ہے کہ یار پتہ نہیں یوں نہ ہو جائے وہ نہ, لٹرلی ڈرلز ہوتی تھیں ہمارے اسکول میں کہ کوئی سوسائڈ بامبر گھس جائے گا تو کیا کرنا ہے, یو نو گولیاں وغیرہ چلا سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو بہت امپیکٹ کرتی ہیں, خاص کر ایک چھوٹا ٹین ایجر سوچیں جس کو نہیں پتا ان چیزوں کے بارے میں, اور اس ٹائم پہ اتنا نہیں پتا تھا, بس یہ پتا تھا کہ یار کوئی جنگ ہے اور اس میں کچھ ہو رہا ہے اور ٹیررسٹس ہوتے ہیں کوئی اور وہ آ گئے ہیں اور وہ آ کے اب یہ یو نو کراچی میں لوگوں کو مار رہے ہیں اور کوئٹہ میں مار رہے ہیں اور لاہور میں مار رہے ہیں اور اسلام آباد میں بھی اکی دکی چیزیں ہو گئی تھیں. تو سڈنلی اٹ واز ویری اسٹریسفل اینڈ اٹ واز یو نو ویری ٹرومیٹک. ظاہر ہے کہ جب ہم نے صبح شام اخباروں میں پڑھنا شروع کر دیا اور ٹی وی پہ دیکھنا شروع کر دیا کہ اب ادھر بم پھٹ گیا, اب ادھر بم پھٹ گیا, تو ہم تھوڑا ڈیسینسٹائز بھی ہونا شروع ہو گئے اور تھوڑا سا جو ہے نا ہم ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو گئے. لیکن ایک ویئرڈ سی چیز تھی جس میں وائلنس ہیڈ سڈنلی بیکم نارملائزڈ, اینڈ آئی فیل لائک دیٹ از ویری ویری رانگ فار اینی جنریشن, بٹ آئی فیل لائک کہ جو میری ایج کے لوگ, آس پاس کے لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں نا, تو وہ ریلیٹ کر سکیں گے کہ اس ٹائم کے اوپر ایک بڑی ایک عجیب سی فیلنگ تھی, ایک عجیب سا سسٹم تھا جس میں لوگ مر رہے ہوتے تھے, ٹی وی لگاتے تھے اور اس پہ ایمبولینسز ہوتی تھیں اور عجیب و غریب ویژولز ہوتے تھے اور ہم زندگی جی رہے تھے, مطلب اٹ واز ویئرڈ. اور چوتھی اور موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ مجھے ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کا ایک کنیکشن مل گیا تھا. اچھا, یہ جو چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا ڈیٹیل میں, سو پلیز بیئر ود می. سب سے پہلا تو جو میں پبلک اسکول سے پرائیویٹ اسکول گیا, یہ ایک بہت انٹرسٹنگ شفٹ تھا. یہ آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا. جب ہم پبلک اسکول میں تھے تو ہم ایک ایف ایس سی کے ٹریک میں تھے, ہمارے بولنے چالنے کا سسٹم بڑا فرق تھا. جب ہم بیکن ہاؤس جا رہے تھے اور او لیولس ٹریک میں جا رہے تھے تو ایک بڑی انٹیمیڈیٹنگ سی فیلنگ تھی کہ یار وہاں پہ او لیولس والے تو بڑے ٹش ٹاش ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں, ان کا کانفیڈنس لیول, ایک بہت میسو انسیکیورٹی تھی اور ایک انڈر کانفیڈنس تھا کہ جب وہاں پہ جائیں گے تو کیا ہوگا, مطلب اپنے ہم او پی ایف میں سیٹ ہیں, اب ہم چھوڑ کے ایک بڑے اسکول جائیں گے اور خاص کر او لیولس ٹریک والے اسکول جائیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا اور کس طرح کے بچے ہوں گے اور کیا سوچ رہے ہوں گے. اسپیشلی سنس میں نے اپنی پوری زندگی ایک ہی اسکول میں گزاری تھی اور میں, اگین میں نے آپ کو بتایا, میں بڑا سادہ سا بچہ تھا, مجھے کوئی آ کے نا دھکا دیتا تھا میں رونا شروع ہو جاتا تھا. میں بہت ہی مطلب جسے کہتے ہیں نا ممی ڈیڈی از دا رائٹ ورڈ, ایکچولی دیٹ واز می, کہ میں برگر بالکل بھی نہیں تھا, انگریزی میری بالکل زیرو تھی اس ٹائم کے اوپر. جو پبلک اسکول تھا اس کے اندر زیادہ جو آپ کا پاپ کلچر تھا وہ پاکستانی تھا, وہ یو نو پیپسی کے گانے اور شہزاد روئے اور جنید جمشید اور یو نو آل آف دیٹ واز دیئر. لیکن انہیرنٹلی میں ایک سمپل اسلام آبادی ممی ڈیڈی بچہ تھا اور بہت انٹیمیڈیٹ ہو کے میں بیکن ہاؤس گیا تھا. خیر بیکن ہاؤس واز اے ویری ویری انٹرسٹنگ شفٹ اور یہ میں نے اس ٹائم کے اوپر اتنا ریئلائز نہیں کیا جتنا میں نے اوور ٹائم لائف میں بعد میں جا کے جب میں نے ریفلیکٹ کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ ایکچولی وہ تھا کیا. جو پرائیویٹ اسکولز ہیں نا جو بیکن ہاؤس جیسے ہیں, جس میں میں بھی گیا, جس میں بہت سارے پاکستانی جاتے ہیں, وہ ایک انہیرنٹلی ایک ویسٹرنائزڈ ببل ہے پاکستان میں جو کہ بنایا گیا ہے, پتہ نہیں بنایا گیا ہے یا خود سے بن گیا ہے, جہاں کی دنیا ہی فرق ہے. مطلب پورا پاکستان ایک ڈفرینٹ فلو میں, ایک ڈفرینٹ کلچر میں, ایک ڈفرینٹ سوچ میں ہے, اور پھر آپ کے پاس بیکن ہاؤس, سٹی اسکول, ایل جی ایس, اس طرح کے اسکولز ہیں جہاں پہ ایک سمجھ لیں کہ ایک پورا ایک فلٹر ببل ہے جو کہ بالکل ہی ڈسکنیکٹڈ ہے فرام پاکستان. جہاں پر ایف ایس سی والے ٹریک کے اندر لوگ پاکستانی کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے تھے یا بالی ووڈ دیکھ رہے ہوتے تھے, تو بیکن ہاؤس میں صرف ہالی ووڈ ہوتا تھا, انگریزی گانے ہوتے تھے, پلے اسٹیشن ہوتا تھا, ایکس باکس ہوتا تھا, پی ایس پی ہوتا تھا, یو نو اٹ واز آپ کا پاپ کلچر فرق, آپ کی لائکس اینڈ ڈس لائکس فرق, آپ کا جو میڈیا جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں وہ فرق. آپ عاطف اسلم کو نہیں سن رہے, آپ نروانا کو سن رہے ہیں, آپ میٹالیکا کو سن رہے ہیں, آپ کے جو اسکول کے بینڈز ہیں اس میں آ کے بچے جو ہیں وہ عاطف اسلم کے گانے نہیں گا رہے, گٹار پہ نہیں بج, مطلب بجا رہے ہیں, عاطف اسلم تو خیر بجا سچ اے ہیوج سینسیشن, بٹ بہت سارے اور آرٹسٹ کو نہیں سن رہے یا بجا رہے ان کو, بلکہ وہ یو نو میٹالیکا یا نروانا اور اس طرح کے بینڈس کو وہ بجاتے ہیں اور وہ کول ہوتا ہے اور آپ کا ایک انڈر گراؤنڈ ایک پورا میوزک سین ہے اور ایک کلچر ہے, آپ شہر میں بھی نکلتے ہیں تو وہ بالکل ایک ڈفرنٹ ہے. وہ آپ امریکن فلمیں دیکھتے ہیں اور آپ ایک منی امریکہ بناتے ہیں اپنے شہر کے اندر, ویئر ایز مین اسٹریم پاکستان بالکل ہی الگ فلو میں ہے, ان کا کلچر, ان کی سوچنے کا طریقہ, ان کے لائکس اینڈ ڈس لائکس بالکل ہی فرق ہیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ چونکہ آپ کا جو پاپ کلچر تھا نا وہ انہیرنٹلی امریکن تھا, مطلب آپ کے گانے سارے کے سارے آپ ٹیلر سوفٹ کو سن رہے ہیں یا آپ میٹالیکا کو سن رہے ہیں, آپ جس کو بھی سن رہے ہیں وہ امریکہ سے آ رہا ہے, ایکسپورٹ ہو رہا ہے. آپ کی فلمیں ساری ہالی ووڈ کی ہیں, اس میں آپ کو امریکہ نظر آ رہا ہے, اس میں امریکن نیریٹو نظر آ رہا ہے, اس میں امریکن تھاٹ پروسیس نظر آ رہا ہے. तो जाहिर है आप उसी को एब्जॉर्ब करते हैं और आप उसी को एज द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द वर्ल्ड बनाना शुरू कर देते हैं। और इसमें जाहिर है एक तो आपके केबल टीवी वगैरह उस टाइम पे आ गए थे, तो उसमें फिल्में वगैरह भी चल रही हैं, वो तो चल रही हैं, बट तो इंटरनेट चूंकि आ चुका हुआ था, तो हम लोग ऑलमोस्ट तमाम लोग जो है वो इंटरनेट पे कनेक्टेड होते थे और इंटरनेट के थ्रू हम बेसिकली वेस्टर्न वी वेंट क्रेजी कंज्यूमिंग द वेस्टर्न मीडिया, क्योंकि वहाँ पे आपके टॉरेंट्स भी आ गए थे और यू नो मुख्तलिफ तरीकों से आप फिल्में, जो नई फिल्म आई नहीं आपने डाउनलोड कर ली, वीडियो गेम्स आप खेल रहे हैं वो भी अमेरिकन है। सो एक शिफ्ट आया, एक बड़ा सबकॉन्शियसली आया और बड़ा एक सटल तरीके से आया, जिसमें एक वो लड़का जो कि एक बड़ी इनहेरेंटली ईस्टर्न वैल्यू ड्रिवन फैमिली में था और ईस्टर्न वैल्यूज के साथ बड़ा हुआ था, उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न वैल्यूज इनकलकेट होना शुरू हुई। अच्छा अब यहाँ पे मैं पॉज लेता हूँ, क्योंकि ईस्टर्न वैल्यूज और वेस्टर्न वैल्यूज की जब बात होती है तो अगेन बहुत सारे लोग एकदम से कह रहे हैं उनके दिमाग में वेस्टर्न वैल्यूज बैड, ईस्टर्न वैल्यूज गुड, ये फ्रेमवर्क बन गया या वाइस वर्सा। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, आपने गुड और बैड का फ्रेमवर्क नहीं बनाना, ये दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, दो डिफरेंट कल्चर्स हैं। पहले मैं ईस्टर्न में था, पहले मेरी थॉट प्रोसेस ईस्टर्न थी, अब मुझे एक्सपोजर हो रहा था और मैं मूव कर रहा था टुवर्ड्स वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम। अच्छा था बुरा था उसके ऊपर कोई अभी आर्ग्यूमेंट नहीं है। अच्छा इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि मेरे चार बड़े बहन भाई जो हैं वो 3 जॉब्स के लिए और 1 एजुकेशन के लिए घर से चले गए थे, तो सडनली मेरे पास एक न्यू फाउंड इंडिपेंडेंस आई थी और एक न्यू फाउंड एम्पावरमेंट आई थी घर में। क्योंकि इससे पहले तो मेरी बात को कोई खाते में नहीं लाता था, मेरी कोई से ही नहीं होती थी, मेरी कोई एजेंसी नहीं थी एज सच, क्योंकि सारे बड़े थे, उनके इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, मैं तो बस चल रहा था, सिस्टम चल रहा था। और अगेन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा कि यार वो बड़ा गलत था, छोटे ऐसे ही होते हैं, वो जनरली चल रहे होते हैं और अच्छे ही चल रहे थे हम, लेकिन पर्सनली इंडिविजुअली मैं बस एक अपनी दुनिया में रहता था, अपने मैं यू नो ख्वाब में रहता था, मैं डेज में रहता था और एक अपनी क्रिएटिविटी के अंदर अपनी थॉट्स, एक समझ लें कि एक मैजिकल वर्ल्ड बनाया हुआ है अपने ही दिमाग में, क्योंकि बाहर की जो दुनिया है वो बड़ी स्ट्रेसफुल है और बाहर की दुनिया के अंदर जो है ना मैं अगर कुछ कहूँगा तो वो एक तो यू नो पावर डायनेमिक इतनी ज़्यादा है, उसमें खपें होंगी फालतू की, तो लेट्स जस्ट नॉट गेट इनटू इट वाला हिसाब था और बस अपना ही रहना है। सडनली उस सिस्टम से निकल के एक साथ ही 1-2 साल के अंदर तमाम लोग चले गए और मेरे पास अपने 24 घंटे डिफाइन करने का मौका आ गया कि यार अब मैंने डिसाइड करना है मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, कैसे सोऊंगा कैसे उठूंगा। मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स थे तो इतना भी लोटनी मची हुई थी, बट इससे पहले कमरा शेयर्ड था बहन भाइयों के साथ, अब मेरे पास पूरा कमरा भी है, मेरी मर्जी है मैंने दीवार को पेंट कैसा करना है, मैंने कोई डेस्क के ऊपर कुछ चीज़ें सजानी है, वो सारा का सारा मेरा प्रेरोगेटिव है। अच्छा और मीन वाइल चूंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक हालात एकदम से ख़राब होना शुरू हो गए थे, तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से एक बहुत मेजर पुश आ रहा था कि यार बच्चों को पुश करें और वो आगे जाएं और वो अपनी लाइव्स बिल्ड करें ऐसी इकोनॉमीज़ में जहां पर वो अपनी ग्रोथ को परस्यू कर सकें और उनके करियर्स जो हैं वो प्रॉपरली सेट हों। तो मेरी मदर ने अपने बच्चों का सोच के उनको भेज तो दिया, लेकिन सडनली आप सोचें घर जिसमें 5 बच्चे हैं वो 5 में से 4 छोड़ के चले गए, दैट ऑब्वियसली टुक अ टोल ऑन माई मदर एंड शी बिकेम वेरी डिप्रेस्ड। एकदम से इतने सारे बच्चे छोड़ के चले गए, उनको आप कोई गिला शिकवा भी नहीं कर सकते, खासकर पुराने वक्तों के जो पेरेंट्स थे ना उन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए निकाली थी, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ था, कोई सोशल लाइफ नहीं कोई कुछ नहीं, बच्चे ही उनकी पूरी जिंदगी थे। और जब वो बच्चे चले जाएं बड़ा दिल पे पत्थर रख के उनको भेजा कि यार बच्चों की खातिर उनकी ग्रोथ की खातिर उनका जाना भी जरूरी है, लेकिन फिर दिल भी टूटता है कि यार बच्चे नहीं है तो मेरा मकसद क्या है, घर भी हमने ऐसे बनाया कि बच्चे सारे मिलके रहेंगे, तो यू नो ऑब्वियसली इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर हर। तो जो घर का एनवायरनमेंट था ना वो बड़ा नेगेटिव सा हो गया था। अब मैं अगेन एक टीनेजर जिसके पास इंटरनेट आया है, जिसके पास स्कूल के अंदर यू नो नए फ्रेंड्स बने हैं और हम नए पॉप कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मीनवाइल 2 भाई जो हैं वो अमेरिका चले गए हैं, वहाँ से भी आपको स्टोरी सुनने को मिल रही हैं और एक्सपोजर आ रहा है और घर का एनवायरनमेंट नेगेटिव है, तो मैंने अपने आप को कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम दैट हाउस एनवायरनमेंट एंड द फैमिली एनवायरनमेंट और मैंने अपने आप को पुश कर दिया टुवर्ड्स द इंटरनेट। मैं स्कूल से आता था, मैं कंप्यूटर ऑन करता था और मैं पूरा दिन उस पर बैठा रहता था और वो दैट वॉज माई गेट वे टू द वर्ल्ड एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वर्ल्ड। वो जो टाइम था ना इंटरनेट का जब नया नया पूरी दुनिया कनेक्ट हो रही थी और सोशल मीडिया आ रहा था और नए नए टूल्स आ रहे थे, इट वॉज एन एक्साइटिंग टाइम और उसके बारे में मैं मजीद आपको आगे बताऊंगा। जो तीसरी चीज़ थी वो अगेन जो मैंने आपको सिक्योरिटी सिचुएशन पहले बताई, जिसमें मुझे याद है कि जो मैरियट का अटैक हुआ था उस पर हमारा घर मैरियट से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब वो ब्लास्ट हुआ था तो पूरा घर हिला था और मैं भागा भागा, मुझे याद है मैं गया लाउंज में और मैंने अपनी अम्मी से पूछा क्या हुआ है, उन्होंने कहा पता नहीं कोई धमाका हुआ है, हमने डरते डरते टीवी लगाया और फिर वही देखा 1 मिनट के बाद कि जी मैरियट पे धमाका हो गया है। अगेन दैट वाज एज एन इस्लामाबादी वो मोमेंट था, वो मुझे आज तक नहीं भूलता, मतलब बड़ा विविडली मुझे याद है, क्योंकि मैरियट हर इस्लामाबादी जो ग्रो किया था उस टाइम के ऊपर, मेन सिटी इस्लामाबाद में, वो मैरियट मल्टीपल टाइम्स जा चुका हुआ था। मैरियट के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग जो इवैक्यू ट्रस्ट कॉम्प्लेक्स था वहाँ पर मेरे दोनों भाई जॉब करते थे बिफोर दे वेंट टू द US, तो तकरीबन 3 साल पहले वो लोग बिल्कुल उसी बिल्डिंग में काम कर रहे थे, मेरे लिए बड़ी क्लोज थी, میں بڑا بہت دفعہ ان کے آفس بھی جاتا رہا ہوں اور اس کو دیکھنا جلتے ہوئے واز کوائٹ سم تھنگ. اب یہ چیز اس وجہ سے امپورٹنٹ تھی کیونکہ اس ٹائم کے اوپر آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کی انلائٹنڈ ماڈریشن بھی آئی تھی, اور جہاں پر آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یار یہ ٹیررزم ہے اور یہ اسلامک فنڈامنٹلسٹس ہیں اور یہ یہ طالبان ہیں جن کو پتہ نہیں کیا برین واش کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام کا نام یوز کر کے یہ تباہی مچاتے ہیں. تو ایک نوجوان لڑکا جو کہ اگین کنیکٹ کریں ساری چیزیں, ایک نوجوان لڑکا جو کہ پرائیویٹ اسکول گیا ہے, انٹرنیٹ پہ جا کے پوری دنیا سے کنیکٹ ہو رہا ہے اور وہ اس کو آواز آ رہی ہے کہ یار یہ جو اسلامسٹس ہیں یہ بہت برے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیسینسٹائز ہوتا ہے, وہ اپنی ایسٹرن ویلیو کو نہ صرف چھوڑتا ہے بلکہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جب وہ مرتے ہوئے بچوں کی ویڈیوز دیکھتا ہے تو اس کو اپنے ایسٹرن ویلیوز اور ایسٹرن کلچر سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگین کوئی ریڈیکل نفرت نہیں ہو رہی, آہستہ آہستہ آپ سوچ رہے ہو کہہ رہے ہو یار یہ بڑا پریمیٹیو کلچر ہے, یہ بڑا الٹریٹ کلچر ہے, یہ بیسیکلی ان ایجوکیٹڈ ہیں اور جاہل ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسے ہیں, اور دنیا کو دیکھو دنیا کدھر ہے اور ویسٹ کدھر ہے اور ڈیولپڈ ورلڈ کدھر ہے اور ہمارے جاہل لوگ جو ہیں وہ یہ کیا کر رہے ہیں. اینڈ اگین اس جہالت کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کیا گیا ود اسلام, ود ایسٹرن ویلیوز, ود آور کلچر, کہ ہمارا کلچر اس کو نکالتا ہے اور ہمارا کلچر اس کو پروان چڑھاتا ہے. اب جہاں پہ میرا یہ ورلڈ ویو چینج ہو رہا ہے وہاں پہ او لیولز میرے ختم ہوئے اور میرے بھائیوں نے جو ہے پوری فیملی کو امریکہ بلا لیا کہ جی آپ آئیں اور آ کے ہمیں وزٹ کریں. اب میں پاکستان سے کبھی باہر نہیں گیا, میں بے حد ایکسائٹیڈ, میں نے ظاہر ہے ہالی ووڈ بھی دیکھا ہوا ہے, میں نے امریکن پاپ کلچر بھی کنزیوم کیا ہوا ہے, میں سوچ رہا ہوں پتہ نہیں کیسا ہوگا کیا ہوگا. میری بہن امریکہ میں جو رہتی ہیں ان سے ہم آج تک ملنے نہیں گئے, 94 سے لے کے 2008 کی بات ہے, 14 ایئرس کے بعد ہم پہلی دفعہ ان سے بھی ملنے جائیں گے امریکہ میں, وہ اس وقت اٹلانٹا میں تھیں, ساتھ ہی ہم سیاٹل بھی جائیں گے بھائی سے ملنے, ساتھ ہی ہم کینیڈا بھی جائیں گے, وینکوور سیاٹل کے بالکل ساتھ آتا ہے, وہاں پہ جا کے ہم اس کو بھی ایکسپلور کریں گے. تو وہ میرا جو ٹرپ تھا اس نے تو میرا بالکل ہی دماغ چینج کر دیا. میں وہاں پہ گیا جی, اتنے فٹ لوگ, اتنے اچھے لوگ, اتنے پولائٹلی ملنے والے لوگ, اور کیونکہ پاکستان میں آپ کو بہت ساری گروئنگ اپ چیزیں بتائی گئی تھیں کہ یہ تو بڑے برے لوگ ہوتے ہیں, بس جیسے ان کے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ان کو ڈمپ کر دیتے ہیں, مطلب اوور دا ٹاپ ہی چیزیں بتا دی تھیں نا کہ پتہ نہیں بہت ہی برے لوگ ہیں, اور ہالی ووڈ نے بھی ایسے دکھایا کہ سب بڑے گندے فحاش لوگ ہیں, سب ایک دوسرے پہ چڑھے رہتے ہیں ہر وقت. تو ایکچوئل میں ویسا نہیں تھا, بڑے نارمل سیدھے سادھے جیسے پوری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں ویسے لوگ تھے. ڈیولپمنٹ کا اسکیل ہی الگ تھا, لوگ خوش باش, لوگ جو ہیں وہ انجوائے کرنے والے, زندگی کے اندر پازیٹیوٹی دیکھنے والے. ہم ڈزنی لینڈ گئے ہیں, وہاں پہ جو اسکیل ہے, ہم بڑے شہروں میں گئے ہیں, وہاں پہ بلڈنگس دیکھیں, روڈیں دیکھیں, میں تو فلیٹ ہو گیا. میں نے کہا یار کیا یہ سویلائزیشن ہے, کیا یہ ملک ہے, کدھر یہ لوگ ہیں اور کدھر ہم لوگ ہیں. ان کے آپ گروسری اسٹور انٹر کریں تو جو لائنیں اور پروڈکٹس اور کنزیومرزم, اور آپ سوچ رہے ہو کہ یار دنیا کیا دنیا ہے اور ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کی اسٹیوپیڈیٹیز کے اندر, اور صبح شام ہم ساس بہو کے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ چاچو نے یہ بول دیا اور گھر کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹمز میں یہ چل رہا ہے, اور پتہ نہیں اتنا ڈفرنس تھا کہ جو تھوڑی بہت ہی رہی صحیح کسر تھی نا جو مجھے پاکستان کے اندر ڈرا کر رہی تھی, جو پاکستان کے اندر کنیکٹ کر رہی تھی, میری وہ بھی ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو گئی. اور چونکہ مجھے پاکستان میں یہ بتایا گیا کہ امریکہ بہت ہی برا ہے, تو جب مجھے اس کے برعکس کوئی چیز نظر آئی نا تو میں نے اس کو پھر بہت ہی ایکسٹریم پہ لیا. میں نے کہا یار اس کا مطلب ہے کہ جو میرے پاکستانی ہیں جو مجھے بتاتے رہے ہیں آج تک امریکہ کے بارے میں, اگر انہوں نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے تو ہر چیز کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے, وہ تو ہیں ہی سارے دو نمبر لوگ, دوغلے لوگ, جو وہ آ کے پتہ نہیں کیا بتاتے رہے ہیں مجھے امریکہ کے بارے میں, اور میں جو ایکسپیرینس کر رہا ہوں وہ ایک بالکل ہی مختلف چیز ہے. اور یہ جو پرٹیکولر تھاٹ ہے نا, یہ جو پرٹیکولر ایکسپیرینس ہے, یہاں پر بندہ پھر ایکسٹریمسٹ فرنج کی طرف جاتا ہے. کیونکہ اگر میں نے کچھ بھی نہ سوچا ہوتا نا امریکہ کے بارے میں, اگر میں بس ویسے ہی اٹھ کے چلا جاتا تو میرے لیے امریکہ ہوتا اچھا ہوتا, میں بہت تعریف کرتا یار بڑا فٹ ہے امریکہ, لیکن شاید میں اتنا میڈلی ان لو نہ ہوتا امریکہ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ مجھے آلریڈی اینٹائی امریکہ کیا گیا ان اے وے, سو جب میں نے اچھا امریکہ ایکسپیرینس کیا تو پھر میں نے اتنی ہی شدت سے اچھے امریکہ کو اپنایا جتنی شدت سے معاشرے نے مجھے اس ملک سے نفرت کرانے کی کوشش کی. مین وائل ادھر پاکستان میں گھر پہ جب میں انٹرنیٹ استعمال کر رہا تھا تو اس وقت انٹرنیٹ نیا نیا تھا, انٹرنیٹ پہ دنیا کے بیسٹ لوگ تھے, دنیا کے ایجوکیٹڈ لوگ تھے, تو وہ لوگ آ کے جب میں ان کو پڑھ رہا ہوں, میں ریڈٹ پہ جا رہا ہوں, میں آگے پیچھے فورمس پہ ہوں, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے لاجیکل لوگ ہیں, کوئی ایموشن ویموشن فالتو کے نہیں ہیں, پازیٹیو لوگ ہیں, فنی لوگ ہیں, اور میرا اپنا جو ورلڈ ویو تھا نا وہ انہیرنٹلی لاجیکل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میں ہر چیز کو بریک ڈاؤن پرابلم سالونگ کروں, میں لاجیکلی سمجھوں, میں فالتو میں ایموشنل نہ ہو جاؤں, کیونکہ ہم ایسٹرن لوگ انہیرنٹلی بڑے ایموشنل ہیں اور ہم پاکستانی تو ایکسٹرا ایموشنل ہیں. تو میں نے وہ ایموشنل سائڈ کو بالکل کٹانا شروع کر دیا اور میں نے کہا یار جو بھی چیز آ رہی ہے, جو بھی میں پڑھ رہا ہوں, جو بھی پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو لاجیکلی بریک کرو, जो उसका आउटकम है वो कर लो, वो अच्छा लगे या बुरा लगे वो लॉजिकल आउटकम है, उसको आगे ले जाओ। तो ओवरऑल एक जो ग्लोबल कम्युनिटी इंटरनेट में एस्टैब्लिश हो रही थी उससे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना शुरू हो गया, उसको मैं बहुत ज़्यादा लुकअप करना शुरू हो गया, और पाकिस्तान और पाकिस्तानी मसाइल को भी मैं लॉजिकली देखना शुरू हो गया, और ओवरऑल मैं अपने पाकिस्तानी और मुस्लिम कल्चर को लुक डाउन अपॉन करना शुरू हो गया और बेसिकली उसे ब्लेम करना शुरू हो गया कि उसकी वजह से जो हमारे पीस के, जो हमारे जस्टिस के, जो हमारे ग्रोथ के मसाइल हैं वो उस चीज़ की वजह से हैं। नंदलेस ये काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन आपको एक थोड़ा सा सेंस मिला होगा कि जो मेरी ट्रांजिशन थी फ्रॉम बींग ए राइट विंग कंजर्वेटिव ईस्टर्न वैल्यूज़ वाला बॉय, उससे मेरा जो शिफ्ट हुआ टूवर्ड्स ए सॉर्ट ऑफ लिबरल लेफ्ट विंग वेस्टर्नाइज्ड बॉय हु वॉज इन लव विद द वेस्ट एंड एवरीथिंग दैट द वेस्ट हैड टू ऑफर, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, चाहे वो इंडिविजुअलिज्म हो, मुझे लग रहा था कि ये तमाम इज़म्स जो हैं ये प्रोग्रेसिव हैं, ये ज़्यादा डिवेलप्ड हैं, ये लॉजिकल प्रोग्रेशन है ह्यूमैनिटी की, और अगर हम इन चीज़ों को अपना लें तो हम भी एक बेहतर और एक डेवलप्ड और एक ग्रोथ ओरिएंटेड पीसफुल मुआशरा बन सकते हैं। और रफली मुझे 5 साल लगे 2005 से लेकर 2010 तक जब मेरा ये ट्रांजिशन हुआ, और 2010 में मैं कह सकता हूँ कि मेरा ट्रांजिशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया और मैं पक्का पकाया जिसे कहते हैं इस्लामाबादी क्विंटेसेंशियल प्राइवेट स्कूल बर्गर लिबरल सेक्युलर जो भी आप वर्ड देना चाहते हैं वो मैं बनकर निकल गया। और इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जो मैं बंदा बन के निकला था ना वो एक बड़ा एरोगेंट बंदा था, वो देख के एरोगेंट नहीं लगेगा आपको। मुझे डिबेट्स करने का बड़ा शौक था, मुझे लोगों से आर्ग्यू करने का बड़ा शौक था, लेकिन एरोगेंस मेरे अंदर थी जिसमें मुझे ये लगता था कि यार ये सारे जाहिल हैं, ये बेचारे इनको पता नहीं है ना, इनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इनको पता नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान फिट है या ईस्टर्न वैल्यूज़ फिट हैं, तो ये सारे जाहिल लोग हैं, इनको जब थोड़ा पता लग जाएगा ना, जब इनको एक्सपोजर हो जाएगा तब इनको पता लगेगा कि यार एक्चुअल में दुनिया कितनी फिट है और ये तो किन दखन उसी चीज़ों में फंसे हुए हैं। कि मैंने आपको अपनी पूरी लाइफ की कहानी सुनाई है, अभी तक मैं अब तकरीबन 20 साल का हो गया हूँ 2010 में, और यहाँ पे अगेन मैंने आपको जैसे बताया मैं एक लिबरल हो चुका हूँ पूरा का पूरा, यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। एज ऑफ दिस वीडियो, एज ऑफ द स्टोरी टेल हियर, आई एम अ फुल फ्लेज लिबरल हु इज़ वेरी एरोगेंट, और उसको लगता है कि उसको दुनिया में बहुत एक्सपोजर मिल चुका हुआ है और इंटरनेट की वजह से उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल चुकी हुई है, और उसके इर्द गिर्द के लोग जनरली इनहेरिटली जाहिल हैं। ऑब्वियसली जो बहुत करीबी लोग हैं, जो स्कूल के साथ के दोस्त हैं, ये वो फिट हैं, वो तो मेरे जैसे हैं, बट बाय एंड लार्ज अगर आपको रैंडम लोग मिल रहे हैं तो बेचारे गरीब हैं, जाहिल हैं, उनको इतना आइडिया नहीं है, अगर उनको एक्सपोजर मिल जाता तो वो भी मेरे जैसे होते और मेरी जैसी वैल्यूज़ अपनाते और मेरा जैसा वर्ल्ड व्यू रखते। तो खैर ये थी मेरी आज की दिल की बात, यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, और हम इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे जिसमें 20 साल से लेके 30 साल के दरमियान मेरी लाइफ में क्या ऐसे ट्रांजिशन आए जिससे मैं फिर से फ्लिप हुआ, कैसे हुआ वो मैं आपको बताऊँगा। बट एनीवेज ये मैंने एक बड़ा जैसे कहते हैं कि एक उड़ता तीर लिया है शायद, आई डोंट नो, शायद इसको लोग सुने और कहें कि यार ये क्या बातें कर रहा है और अजीब व गरीब बातें कर रहा है, और मैं बहुत इसमें जाहिर है बड़ा मैं ऑनेस्ट और रॉ होकर आपसे बातें कर रहा हूँ सारी, अपनी एवोल्यूशन ही बता रहा हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बता रहा हूँ। तो आई डोंट नो कि हाउ यू विल टेक इट, आई डोंट नो इफ यू आर इवन इंटरेस्टेड, आप अभी तक इस पॉइंट तक पहुँच गए हैं या आपने पहले ही वीडियो बंद कर दी है, पर अगर आप पहुँच गए तो मुझे ज़रूर बताइएगा अपने ख्यालात अभी तक जो आपने सुना उसके बारे में। जाहिर है कोई जजमेंट्स ना बनाइएगा, आने वाले 2 दिन में मजीद बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा, बट आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स, पर्टिकुलरली वो लोग जो कि 90s में बड़े हुए, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था ग्रोइंग अप, और जो तमाम मैंने आपको चेंजेस बताई, इंटरनेट को आपको मिला, उससे आपके अंदर क्या चेंजेस आई, स्कूलिंग के अंदर कैसा था, क्या थॉट्स थी, क्या आपको बताया गया, आपकी पर्सनल एवोल्यूशन कैसे हुई, वॉर ऑन टेरर से आपको क्या इंपैक्ट हुआ, इन तमाम चीज़ों से आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ कैसे हुई या ग्रोथ हैम्पर कैसे हुई या चेंजेस क्या आई, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू हियर योर स्टोरीज एज वेल। फ्राइडेज को जैसा मैंने आपको बताया कि मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो करूंगा, तो यहां पर ईमेल एड्रेस आ रहा है, अगर आपके कोई भी सवाल आते हैं तो आप मुझे thoughtbehindthings@gmail.com पे भेज सकते हैं, मैं उनको आंसर करूंगा ऑन फ्राइडे। बट एनीवेज दिस वाज सईद मुजम्मिल हसन जैदी, यू आर वाचिंग दिल की बात, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।